नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। निकोलस कार्डरस की ग्लो किड्स बच्चों और किशोरों के अत्यधिक स्क्रीन उपयोग पर केंद्रित एक गैर कथा पुस्तक है। लेखक, जो नशे और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, इसे केवल समय प्रबंधन का प्रश्न नहीं मानते। उनका तर्क है कि तेज, लगातार और उम्र के अनुकूल न होने वाला डिजिटल उत्तेजन बच्चों के ध्यान, नींद, भावनात्मक संतुलन और वास्तविक दुनिया से जुड़ाव को प्रभावित कर सकता है। पुस्तक का मुख्य लक्ष्य माता पिता, शिक्षकों और देखभाल करने वालों को यह समझाना है कि स्क्रीन का आकर्षण कैसे आदत से आगे बढ़कर बाध्यकारी व्यवहार का रूप ले सकता है। कार्डरस, न्यूरोविज्ञान, नैदानिक अनुभव, सामाजिक परिवर्तनों और गेम तथा डिजिटल मंचों की डिजाइन पर चर्चा करते हैं।
उनकी भाषा चेतावनीपूर्ण है और कई निष्कर्षों को मजबूत कारण संबंध की तरह रखती है, इसलिए पाठक को उनके दावों को व्यापक शोध और व्यक्तिगत परिस्थितियों के संदर्भ में देखना चाहिए। फिर भी पुस्तक का व्यावहारिक केंद्र स्पष्ट है। बच्चों के डिजिटल परिवेश के लिए सजग सीमाएं बनाना और ऑफलाइन जीवन को प्राथमिकता देना।
मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, स्क्रीन उत्तेजना को व्यावहारिक लत के रूप में देखने का तर्क। ग्लो किड्स की केंद्रीय दृष्टि यह है कि कुछ डिजिटल अनुभव, विशेषकर तेज गति वाले खेल,
सामाजिक प्रतिक्रिया देने वाले मंच और लगातार नया दृश्य प्रस्तुत करने वाली सामग्री बच्चों के लिए सामान्य मनोरंजन से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं।
कार्डरस इन्हें व्यवहारिक लत के ढांचे में रखते हैं। उनका ध्यान केवल कुल स्क्रीन घंटों पर नहीं, बल्कि उस अनुभव की तीव्रता, तात्कालिक प्रतिक्रिया और बच्चे के नियंत्रण खोने की संभावना पर है।
पुस्तक में यह तर्क दिया गया है कि स्क्रीन आधारित उत्तेजना मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली को सक्रिय करती है, इसलिए बच्चा बार बार उसी अनुभव की ओर लौटना चाहता है। लेखक इस तुलना को मादक पदार्थों की लत से जोड़ते हैं। यह पुस्तक की सबसे विवादास्पद और सबसे अलग पहचान वाली बात भी है, क्योंकि स्क्रीन उपयोग और नशीले पदार्थों के प्रभाव को एक समान मानना वैज्ञानिक रूप से सरल निष्कर्ष नहीं है।
फिर भी कार्डरस का व्यावहारिक प्रश्न उपयोगी है। क्या बच्चा उपकरण हटने पर असामान्य चिड़चिड़ापन, बेचैनी या नियंत्रण की कमी दिखाता है? इस दृष्टि से पुस्तक किसी भी स्क्रीन उपयोग को रोग नहीं कहती, बल्कि उन पैटर्नों पर ध्यान दिलाती है जिनमें डिजिटल गतिविधि नींद, पढ़ाई, संबंधों, खेल या दैनिक जिम्मेदारियों को पीछे धकेलने लगे। दूसरा, विकासशील मस्तिष्क और बहुत जल्दी डिजिटल संपर्क की चिंता। कार्डरस छोटे बच्चों के लिए प्रारंभिक और अनियंत्रित स्क्रीन संपर्क को विशेष जोखिम वाला मानते हैं।
उनका तर्क है कि बचपन में ध्यान, आत्मनियंत्रण, भाषा, खेल, सामाजिक संकेत समझने और भावनाओं को संभालने की क्षमताएं विकसित हो रही होती हैं। इस चरण में वास्तविक लोगों के साथ संवाद, शारीरिक खेल, ऊब को सहना और खुला अन्वेषण सीखने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। पुस्तक के अनुसार, यदि इन अनुभवों का बड़ा हिस्सा अत्यधिक आकर्षक डिजिटल सामग्री से बदल दिया जाए, तो बच्चे के लिए धीमी गति वाले कामों पर टिकना कठिन हो सकता है।
लेखक उम्र के अनुरूपता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। एक ही उपकरण, सामग्री और उपयोग का ढंग अलग उम्र के बच्चों पर समान प्रभाव नहीं डालता, इसीलिए वे केवल शैक्षिक कहे जाने वाले ऐप को अपने आप लाभकारी मान लेने के विरुद्ध सावधान करते हैं। यह तर्क तकनीक विरोध की बजाय विकासात्मक उपयुक्तता की कसौटी प्रस्तुत करता है। हालांकि पुस्तक का समग्र रुख काफी कठोर है। पाठक के लिए मुख्य उपयोग यह है कि वे सुविधा के लिए स्क्रीन देने से पहले बच्चे की उम्र, सामग्री की गति, सहभागिता की गुणवत्ता और उसके बाद के व्यवहार को देखें। किताब देरी से परिचय और प्रत्यक्ष मानवीय अनुभवों को प्राथमिकता देने की सलाह देती है। तीसरा, वेरिएबल रिवॉर्ड डिजाइन और खेलों का लगातार खींचने वाला ढांचा।
पुस्तक डिजिटल खेलों और कुछ ऑनलाइन सेवाओं की डिजाइन को समस्या के एक सक्रिय हिस्से के रूप में देखती है।
कार्डरस विशेष रूप से वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल की चर्चा करते हैं।
इसका अर्थ है कि हर प्रयास पर एक जैसा पुरस्कार नहीं मिलता, बल्कि कभी जीत, कभी नया स्तर, कभी दुर्लभ वस्तु और कभी सामाजिक मान्यता मिलती है।
अनिश्चित पुरस्कार की यही व्यवस्था उपयोगकर्ता को अगली कोशिश के लिए रोके रख सकती है। लेखक इसकी तुलना स्लॉट मशीन जैसी प्रणालियों से करते हैं, जहां अगला परिणाम मिलने की अपेक्षा स्वयं व्यवहार को बनाए रखती है।
बच्चों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके आत्मनियंत्रण और जोखिम की समझ अभी विकसित हो रही होती है, इसलिए पुस्तक माता पिता से केवल अवधि तय करने के बजाय गतिविधि की बनावट समझने को कहती है।
शांत, सीमित और स्पष्ट अंत वाले कार्यक्रम का असर प्रतिस्पर्धी, अंतहीन और पुरस्कार केंद्रित खेल से अलग हो सकता है।
यह विषय परिवारों को दोषारोपण से हटाकर डिजाइन की भूमिका देखने में मदद देता है। बच्चे का बार बार खेलने का आग्रह हमेशा अनुशासनहीनता नहीं होता, वह एक ऐसे उत्पाद के साथ उसकी प्रतिक्रिया भी हो सकता है जिसे लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए बनाया गया है। पुस्तक का निष्कर्ष है कि ऐसे अनुभवों पर अधिक सख्त और पूर्व निर्धारित सीमाएं जरूरी हो सकती हैं। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम के जरिए व्यवहारिक संकेतों को पहचानना। कार्डारस इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम नाम से एक ऐसी स्थिति का वर्णन करते हैं जिसमें लंबे समय की तीव्र स्क्रीन उत्तेजना के बाद बच्चा थका हुआ होने पर भी शांत नहीं हो पाता। इसे वे वायर्ड एंड टायर्ड अवस्था कहते हैं, यानी शरीर थका है लेकिन मन उत्तेजित और अस्थिर बना हुआ है। पुस्तक के अनुसार इसका व्यवहारिक रूप चिड़चिड़ापन, मूड में उतार चढ़ाव, आक्रामकता, ध्यान की कठिनाई, सोने में परेशानी या उपकरण हटाने पर अत्यधिक विरोध के रूप में दिख सकता है। अपरुए लोपोम उरे खोली तरे तरो प्रकोली कारिक लोकी वोहरे तेहा पो कोले वटका तेपा फिनो हाकी पो पारो तो चब बस ऐसा करवा देते हो आदम बरता तर तेरे से इंतर पाउर अधिकारी अफक मातला कोफर गोत पर तां सेना अवन लो चीम पातियन उसेर तो देना मत हम तो इंपा मत मत इडो तो पा पमत संसामा मर मर खोती मा। यह अवधारणा माता पिता को पैटर्न देखने का एक सरल ढांचा देती है, खासकर यह देखने के लिए कि क्या लक्षण स्क्रीन उपयोग बढ़ने के बाद उभरते या बिगड़ते हैं। लेकिन इसे औपचारिक चिकित्सा निदान या हर व्यवहार समस्या का कारण नहीं समझना चाहिए। ध्यान संबंधी कठिनाइयों, चिंता, अवसाद, सीखने की समस्याओं और पारिवारिक तनाव के कई कारण हो सकते हैं। पुस्तक की उपयोगी सलाह यह है कि परिवार समय, सामग्री, सोने के समय और बच्चे के व्यवहार का निरीक्षण करे। यदि लगातार गंभीर बदलाव हो तो उपकरण छीनने भर के बजाय योग्य बाल चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मूल्यांकन लेना उचित है। इस तरह पुस्तक चेतावनी देती है, जबकि जिम्मेदार अनुप्रयोग अलग अलग कारणों की जांच भी मांगता है। अंत में, डिजिटल सीमाओं के साथ वास्तविक दुनिया की दिनचर्या को पुनर्स्थापित करना ग्लो किड्स का समाधान पूर्ण तकनीकी भय पर नहीं बल्कि रोकथाम, स्पष्ट नियम और विकल्पों की रचना पर टिका है। कार्डारस का सबसे दृढ़ सुझाव है कि बच्चों को बहुत जल्दी निजी और अत्यधिक उत्तेजक उपकरणों तक पहुंच न दी जाए। वे परिवारों को नियम पहले से तय करने, स्क्रीन को शयन कक्ष से बाहर रखने और रात में उपकरणों के कारण नींद में बाधा न आने देने की सलाह देते हैं। पुस्तक यह भी कहती है कि केवल उपकरण हटाना पर्याप्त नहीं है, बच्चे के समय और रुचि के लिए खेलकूद, पढ़ना, रचनात्मक गतिविधियां, मित्रों के साथ प्रत्यक्ष मेलजोल और पारिवारिक सहभागिता जैसे विकल्प मौजूद होने चाहिए। यह दृष्टि दंडात्मक नियंत्रण से अलग है, क्योंकि खालीपन छोड़ देने पर संघर्ष और वापसी की संभावना बढ़ सकती है। माता पिता के लिए एक और संकेत यह है कि नियमों को मनमाना आदेश बनाने के बजाय उनके कारण समझाए जाएं। बच्चे की उम्र और पारिवारिक स्थिति के अनुसार नियम बदल सकते हैं, लेकिन भोजन, नींद, पढ़ाई और शारीरिक गतिविधि को उपकरण से पहले रखना एक स्थिर आधार बन सकता है। पुस्तक स्कूलों में बढ़ते डिजिटल उपयोग पर भी सवाल उठाती है और माता पिता को शैक्षिक तकनीक के दावों की गुणवत्ता परखने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष में, ग्लो किड्स उन माता पिता, शिक्षकों, स्कूल प्रशासकों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए उपयोगी है जो बच्चों के स्क्रीन व्यवहार को केवल अनुशासन की समस्या मानकर नहीं छोड़ना चाहते। खासकर उन परिवारों को इससे ठोस प्रश्न मिल सकते हैं जहां गेम, फोन या टैबलेट के कारण नींद, पढ़ाई, मनोदशा, शारीरिक सक्रियता या पारिवारिक संवाद प्रभावित हो रहा हो। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह स्क्रीन समय की गिनती से आगे बढ़कर सामग्री की तीव्रता, पुरस्कार आधारित डिजाइन, निजी उपकरणों की पहुंच और ऑफलाइन विकल्पों की कमी पर ध्यान देती है। शयन कक्ष को स्क्रीन मुक्त रखना, नियम पहले से बनाना और वास्तविक गतिविधियों को प्राथमिकता देना जैसे सुझाव सीधे लागू किए जा सकते हैं। फिर भी पाठक को लेखक के कुछ व्यापक न्यूरोलॉजिकल और कारण संबंधी दावों को सावधानी से पढ़ना चाहिए। डिजिटल उपयोग के प्रभाव व्यक्ति, उम्र, सामग्री, पारिवारिक संदर्भ और पहले से मौजूद मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार बदलते हैं। समान विषय की अधिक संतुलित पुस्तकों की तुलना में ग्लो किड्स अधिक चेतावनीपूर्ण और संयम समर्थक है। यही इसकी सीमा भी है और विशिष्टता भी। यह पुस्तक तकनीक के संभावित लाभों का विस्तृत संतुलन देने के बजाय उस जोखिम पर जोर देती है जिसे सुविधाजनक डिजिटल संस्कृति अक्सर कम आंकती है। इसलिए इसे अंतिम वैज्ञानिक निर्णय के रूप में नहीं बल्कि परिवार की डिजिटल आदतों की गंभीर समीक्षा शुरू करने वाली पुस्तक के रूप में पढ़ना सबसे उपयोगी होगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं निकोलस कार्डारस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।